हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुनैना की सौतेली माँ ने अगले ही दिन अपने मायके वालों, अपने भाई और उसके दोस्त को घर बुला लिया और नैना को तैयार होकर आने को कहा। सुनैना उस वक्त अपनी कोचिंग क्लासेस के लिए गई हुई थी, इसलिए नैना ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और अपनी माँ के जाते ही अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। उसने कपड़े भी उठाकर भेज दिए। उसे ये सगाई किसी भी कीमत पर नहीं करनी थी और ये उसने तय कर लिया था। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। इतना बोलकर नैना ने अपना फ़ोन निकालकर सुनैना को कॉल लगाया। जैसे ही सुनैना ने कॉल रिसीव की, नैना ने उसे सब कुछ बता दिया। सुनैना से बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर अपना फ़ोन बेड पर रख दिया। वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। कुछ देर बाद नैना के कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। नैना को लगा शायद सुनैना वापस आ गई है, इसलिए उसने बिना आवाज़ सुने ही जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने सुनैना नहीं बल्कि उसके सौतेली माँ खड़ी थी। नैना को इस तरह घर के कपड़ों में देखकर वो गुस्से से चिल्लाई, चलो महारानी, अभी तक तैयार नहीं हो पाई तुम। 2 घंटे हो चुके हैं, पूरा दिन नहीं है किसी के पास तुम्हारा इंतजार करने के लिए। लेकिन नैना ने अपनी सौतेली माँ की बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुड़कर वापस अपने कमरे में आते हुए बोली, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि मेरा इंतजार करें और मैं कहीं भी नहीं आने वाली। नैना का ये सीधा इनकार सुनकर उसकी माँ गुस्से से भर गई और तेज आवाज में बोली, चलोगी कैसे नहीं, चलना पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारे नखरे देखने नहीं बैठी हूँ। नीचे तुम्हारे धर्म भाई साहब के साथ सगाई के पूरे इंतजाम हो चुके हैं। अब चुपचाप चल रही हो या विनोद भैया को बुलाओ, वो तुम्हें घसीट कर नीचे ले चलेंगे। अपनी माँ की इस धमकी से नैना को थोड़ा डर लगा। वो सोचने लगी कि कहीं ये सच में अपने भाई को ना बुला ले। ये सब सुनकर नैना को याद आया कि किस तरह बचपन में जब वो अपनी सौतेली माँ की कोई बात नहीं मानती थी या किसी काम के लिए मना कर देती थी तो वो और उनका भाई मिलकर उसे बहुत मारते थे। ये सोचकर वो डर गई और चुपचाप बिना कपड़े बदले अपने कमरे से बाहर आकर नीचे जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मन ही मन सोच रही थी कि बस ऐसे ही सुनैना यहाँ आ जाए, फिर वो दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर लेंगी। लेकिन अकेले नैना काफी कमजोर पड़ जाती थी हमेशा ही। नैना भले ही बिल्कुल भी एंगेजमेंट फंक्शन के हिसाब से तैयार नहीं हुई थी, लेकिन उसे मॉडल बनने का शौक था। वो हमेशा ही अच्छी तरह से मेकअप करके और अच्छे कपड़े पहनकर रहती थी और इसलिए वो इस वक्त भी काफी खूबसूरत लग रही थी। जब वो हॉल में आई तो जिस आदमी से उसकी सगाई तय हुई थी वो उम्र में उसके पिता से बस कुछ साल ही छोटा लग रहा था। नैना को देखकर उसकी आंखों में नैना के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। उसके साथ उसकी सौतेली माँ के तीनों भाई भी खड़े थे और उनकी पत्नियाँ। कुल मिलाकर 12-15 लोग थे उसके घर के हॉल में। वहाँ पर ही बैठने का इंतजाम था और वो देसी घरेलू फंक्शन जैसा लग रहा था। ये सब देखकर नैना का गला सूख गया। उसका मन कर रहा था कि वो सीधा दरवाजे की तरफ भाग जाए, लेकिन उसे पता था ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा और फिर वो लोग उस पर और ज्यादा जुल्म और जोर जबरदस्ती करेंगे। नैना अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मॉडल बनने से पहले उसके चेहरे पर कोई भी स्क्रैच मार्क्स आए, क्योंकि इस वजह से उसे मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसके हाथ से जा सकते थे। उसका सिर्फ एक ही सपना था, एक मॉडल बनना। अरे जिज्जी, अब क्या सोच रही हो, किसी और का इंतजार है क्या? चलो रस्म शुरू करो, अंगूठी ही तो बदलना है। होने वाले दूल्हे के पीछे खड़ा उसका दोस्त और नैना की सौतेली माँ का भाई जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोला। नैना को उसका इस तरह हंसना बिल्कुल रास नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई नैना का मजाक उड़ा रहा है। नैना का मन कर रहा था कि आगे बढ़कर उसके सारे दांत तोड़ दे। मुझे कोई सगाई नहीं करनी है, चले जाओ सब लोग यहाँ से, नहीं तो तुम सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपने दोनों हाथ पीछे करके मुट्ठी बांटते हुए नैना ने तेज आवाज में चिल्लाकर उन सबको कहा, चुप कर जा लड़की, तुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। तेरा बस चले तो जिंदगी भर ही हमारे सीने पर दोज बनकर पड़ी रहे। वो तो धर्म भाई साहब हैं जो तुझसे सगाई करने के लिए राजी हो गए, नहीं तो ऐसा परिवार तो तुझे कभी नहीं मिलता। नैना की सौतेली माँ ने उसे लगभग डांटते हुए और उसे चुप कराते हुए बोला, हाँ तो मुझे नहीं चाहिए इतना अच्छा परिवार, मैं लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, छोड़ दो मुझे और जाने दो। तुम लोग भी चले जाओ, क्योंकि इस तरह किसी से जोर जबरदस्ती शादी करवाना अपराध है और तुम सबको इसकी सजा मिलेगी, तुम जितने भी इसमें शामिल हो। नैना ने उन सबको पुलिस की धमकी देकर डराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जहाँ से आते थे वहाँ ये सब कुछ बिल्कुल मायने नहीं रखता था। इस तरह लड़की की बिना मर्जी शादी कराना तो बहुत ही आम बात थी उन लोगों के लिए। नैना की ये बात सुनकर वो सभी इस तरह हंसने लगे जैसे नैना ने उन्हें कोई चुटकुला सुनाया हो। अरे बस करो बिटिया, बहुत ज्यादा ही चिल्ला रही हो, लड़कियाँ इतना ज्यादा बोलते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। नैना की सौतेली माँ के भाई की पत्नी ने उसे चुप कराते हुए कहा। नैना गुस्से में उन्हें घूर कर देखने लगी, तभी दरवाजे की तरफ से एक तेज आवाज आई। और इस उम्र में बूढ़ी मामी जी जेल में जाती हुई भी अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगेंगी। क्यों मामी जी, जाना है जेल? वैसे मामा जी और आपके प्यारी ननद जी को भी भेज देंगे, कंपनी के लिए ठीक रहेगा ना? वो सुनैना की आवाज थी। वो दरवाजे पर पुलिस और लेडी कांस्टेबल के साथ खड़ी थी, क्योंकि नैना ने उसे पहले ही कॉल पर ये सब कुछ बता दिया था और वो अपने कोचिंग सेंटर से सीधा पुलिस स्टेशन गई थी और पुलिस को अपने साथ लेकर यहाँ आई थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि घर पर ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। अब जब पुलिस ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था तो किसी तरह की पूछताछ की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। क्रमशः